पृष्ठ संख्या 131, रघुवीर सहाय, कविता खबर भी है। दूसरे महायुद्ध के दिनों की बात है। उन दिनों काशी में आज की तरह साहित्य पर अकाल की छाया न थी। वहाँ पुरानी और नई पीढ़ी के अनेक रचनाकार मौजूद थे। लेखकों के बीच गहरी आत्मीयता थी, आज की तरह तीखी कटुता नहीं। युद्ध के दिन थे, इसलिए खबरों की चिंता बढ़ गई थी। सभी अखबारों का बेचैनी से इंतजार करते थे। एक दिन सवेरे सवेरे नई पीढ़ी के एक कवि से दूसरे कवि की भेंट हो गई। रात में जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों की बमबारी की खबर आई थी। उस समय सबको दुनिया के भविष्य की चिंता थी। दुनिया का भविष्य युद्ध के भविष्य से जुड़ा था, इसलिए युद्ध की हर खबर लोगों के दिलों की धड़कन तक पहुंचती थी। ऐसी स्थिति में संवेदनशील कवि युद्ध की खबरों से बेखबर कैसे रह सकते थे? एक कवि ने दूसरे कवि को देखते ही पूछा, इन्वर्टेड कामा, तुमने आज का अखबार देखा है? आज एक बहुत अच्छी खबर है, मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर बमबारी की है, इन्वर्टेड कामा बंद। दूसरे कवि ने जवाब दिया, मैं कवि हूँ, अखबार नहीं पढ़ता। सवाल पूछने वाला चकित और चुप होकर कविता में समय देवता को पुकारने वाले अपने कवि मित्र का मुंह देखता रह गया। वह भी कवि था, लेकिन ऐसा नहीं जो कवि होने के कारण अखबार ना पढ़ता हो या अखबार ना पढ़कर कवि बने रहना चाहता हो। कहा जाता है कि मीर तकी मीर अपनी जबान खराब हो जाने के डर से साधारण लोगों से बात करना मुनासिब नहीं समझते थे। वैसे ही आज के कवि अखबार नहीं पढ़ते। ऐसे कवि अपने मन को आसपास की जिंदगी की हवा से और अपनी जबान को उस हवा के साथ आने वाले धूल धक्कड़ से बचाए रखना चाहते हैं। असल में इस प्रवृत्ति के पीछे कविता के स्वभाव और जिंदगी से उसके संबंध की एक ऐसी समझ है जो कविता को छुई मुई मानती है। जो लोग अखबार को कविता का दुश्मन समझते हैं, वह अपनी कविता को जिंदगी के वास्तविक घटनाओं और स्थितियों से दूर रखना चाहते हैं। गनीमत है कि आज ऐसे कवि दुर्लभ होते जा रहे हैं जो कवि होने के कारण अखबार नहीं पढ़ते। हिंदी कविता की दुनिया में अभी भी रघुवीर सहाय की कविता के बावजूद कुछ लोगों के मन में कविता से पत्रकारिता के संबंध को लेकर कई तरह की शंकाएं हैं और कई भ्रम भी, जिनके काव्य बोध पर पृष्ठ संख्या 132 आज भी नई कविता के संस्कार छाए हुए हैं। वे कविता में पत्रकारिता के किसी पहलू या कौशल को आते देखकर भड़क उठते हैं। यह ठीक है कि आजकल अधिकांश पत्रकारिता व्यवसाय और पेशा है, कोई बौद्धिक जरूरत नहीं। वह व्यापक जन समुदाय से संवाद करने, उसे जानने और जगाने की इच्छा के बदले लाभ लोभ की भावना से चल रही है। ऐसी पत्रकारिता अपनी साख बनाने और बाजार बढ़ाने के लिए साहित्य का मज़ेदार मसाले की तरह इस्तेमाल करती है। जाहिर है, ऐसी पत्रकारिता सच्चे लेखकों और कवियों को आकर्षित नहीं कर सकती, लेकिन पत्रकारिता इतने तक सीमित नहीं है। फिर वह जैसी भी है, आज के हमारे जीवन पर उसका प्रभाव इतना गहरा है कि उसकी उपेक्षा जगत गति से उदासीन कोई मूढ़ ही करेगा। आज का कोई कवि ऐसा मूढ़ कैसे हो सकता है? आज यह समझना जरूरी हो गया है कि अखबार और जनसंचार के दूसरे माध्यम समाज की वास्तविकताओं और सच्चाइयों को विशेष रूप रंग में ढालकर पेश करते हैं और सामाजिक चेतना को मनचाही दिशा में मोड़ते हैं। इस तरह जनसंचार के माध्यम हमारे सामाजिक बोध को ही नहीं, बोध की प्रक्रिया को भी प्रभावित कर रहे हैं। संप्रेषण के माध्यमों की यह भूमिका सामाजिक चेतना के विकास और मानवीय संवेदना की रक्षा की चिंता करने वाले लेखकों, कवियों और कलाकारों के लिए अब एक चुनौती बन गई है। आज भी जो कवि अपने नागरिक धर्म और कवि कर्म के बीच रहस्य का पर्दा डालकर इस ओर नागरिक और उस ओर कवि बने रहते हैं, उन्हें भले ही इस चुनौती का एहसास ना हो, लेकिन जो लेखक समाज की जिंदगी के रोज रोज के इतिहास में बनते बिगड़ते मनुष्य और मानवीय रिश्तों की पहचान में सचमुच दिलचस्पी रखते हैं, वह इस चुनौती से मुंह नहीं मोड़ सकते। रघुवीर सहाय की कविता में इस चुनौती का एहसास और उसका सामना करने की कोशिश आज के किसी भी दूसरे कवि से अधिक है। सामाजिक चेतना पर जनसंचार के माध्यमों के आक्रमण के बारे में सजगता रघुवीर सहाय की कविता में पहले भी रही है, लेकिन कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ की कविताओं में वह पहले से अधिक तीव्रता के साथ प्रकट हुई है, क्योंकि इन्हीं दिनों रेडियो, टेलीविजन और अखबार के उग्र प्रभाव के अधिक प्रमाण सामने आए हैं। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ के निवेदन में उन्होंने लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा, भाषा के अनेक प्रकारों पर व्यावसायिक और राजनीतिक कब्जे ने भाषा की रचनात्मकता को अनेक प्रकार से विकृत और कुंठित किया है। नई प्रतिभा को सामाजिक चेतना के विषय में बलपूर्वक अशिक्षित करके मनुष्य के बीच साझेदारी के संबंध तोड़े हैं और उनकी जगह बनावटी रागात्मकता के नए समझौते आरोपित किए हैं, इन्वर्ट कॉमा बंद। यह स्थिति हर तरह की रचनाशीलता के लिए अत्यंत खतरनाक है, विशेष रूप से कविता के लिए तो सबसे अधिक। पृष्ठ संख्या 133, संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों के प्रति नकली उदासीनता या फिर सतही दिलचस्पी से इस खतरे का सामना नहीं हो सकता। जो कवि होने के नाते अखबार नहीं पढ़ते, वह नकली उदासीनता के शिकार हैं। ऐसे कवि समकालीन जिंदगी की वास्तविकताओं के गर्द गुबार से कविता को बचाते हैं और मनगढ़ंत समस्याओं पर जड़ाऊ कविता लिखते हैं। दूसरी ओर वह कवि हैं जो यथार्थवाद के नाम पर अखबार का काम कविता के जिम्मे सौंप देते हैं और अखबारी कविता लिखते हैं। यह समकालीन सामाजिक वास्तविकता और पत्रकारिता दोनों में सतही दिलचस्पी के कारण होता है। इसके पीछे पत्रकारिता से कविता के संबंध की सतही समझ भी होती है। इन दोनों स्थितियों में कविता मारी जाती है। पहली स्थिति में वह अपने समय और समाज से दूर जाकर मरती है और दूसरी स्थिति में पत्रकारिता से कविता के संबंध की सतही समझ उसे मार डालती है। हमारी सामाजिक चेतना और रचनाशीलता के सामने खड़े इस खतरे के बारे में रघुवीर सहाय केवल चिंतित ही नहीं हैं, वह संप्रेषण के माध्यमों की शक्ति और भूमिका को पहचानते भी हैं। यही नहीं, वह इन माध्यमों के पीछे सक्रिय शक्तियों और उनके इरादों को भी समझते हैं। इसीलिए वह नकली उदासीनता या सतही दिलचस्पी के शिकार नहीं होते। वे रचना के स्तर पर संप्रेषण के माध्यमों की ना तो उपेक्षा करते हैं और ना उनके सामने आत्मसमर्पण। वह सामाजिक चेतना और रचनाशीलता के सामने खड़े इस खतरे को रचनात्मक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और अपनी कविता में उसका सामना करते हैं। इस प्रक्रिया में वह कविता को भी विकसित करते हैं और उसे अद्यतन बनाते हैं। संप्रेषण के माध्यम आज की कविता के सामने ऐसी चुनौती है जिनकी उपेक्षा कविता के लिए आत्मघाती होगी, इसलिए उस पर बात करना जरूरी है। इस चुनौती के बारे में बात करने के लिए रघुवीर सहाय की कविता से बेहतर संदर्भ और कहाँ मिलेगा? उनके यहाँ पत्रकारिता से कविता का रचनात्मक संबंध जितना समृद्ध और संभावनाओं से भरपूर है, वैसा हिंदी में अन्यत्र शायद ही मिले। रघुवीर सहाय जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के स्वभाव और काम के ढंग को अच्छी तरह जानते थे। वह हिंदी पत्रकारिता से जीवन भर जुड़े रहे, इसलिए उसकी भीतरी दुनिया की नस नस पहचानते थे। नवभारत टाइम्स और दिनमान में काम करते हुए उन्होंने एक पत्रकार की नज़र से दुनिया को देखने और पाठकों के सामने पेश करने की कला का रहस्य जाना था। पत्रकारिता के अनुभव से उन्होंने यह भी समझा था कि अखबार अपने पाठकों को क्या देता है और बदले में क्या ले लेता है। एक स्वाधीन पत्रकार की आँखों से उन्होंने पत्रकारिता के तिलिस्म को भी देखा था। उनकी कविता में पत्रकार के अनुभवों की अनगूंजे हर स्तर पर मौजूद हैं। कहीं पत्रकार की दृष्टि से कवि दृष्टि की टकराहट है तो कहीं एकता भी। पृष्ठ संख्या 134, रघुवीर सहाय जानते हैं कि संप्रेषण के माध्यमों पर व्यावसायिकता का कब्जा है, जिसे मनुष्य मानवीय अनुभव और मानवीय रिश्तों की मान मर्यादा की कोई चिंता नहीं है। टेलीविजन और अखबार प्रत्येक अनुभव को एक सनसनी और प्रत्येक मनुष्य को एक वस्तु बनाते चले जाते हैं। सामाजिक चेतना को दुविधा और भ्रम में डालने का तरीका टेलीविजन जानता है, इसलिए कभी कभी वह दिखला देता है भूखा नंगा इंसान। उसके ऊपर बजा दिया करता है सारंगी की तान। हंसो हंसो जल्दी हंसो। भूखा नंगा इंसान दिखलाने के बाद सारंगी की तान, समाज की कट सच्चाई को देखकर बेचैन चेतना पर करुणा का लेप, टेलीविजन की कला का कमाल। रघुवीर सहाय विभिन्न कलाओं के आपसी रिश्तों को, खास तौर से कविता से संगीत के रिश्तों की रचनात्मक संभावनाओं को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे। वह कहते थे कि यूनाइटेड कामा शब्द भाषा के अतिरिक्त भाषा के रूप हैं जो हमें दूसरी कलाओं के माध्यम से दिखते हैं। उनके प्रति हम जितनी अधिक समझ विकसित कर सकें हमें करनी चाहिए। यूनाइटेड कामा बंद। ऐसा उन्होंने स्वयं किया था। संगीत की भाषा के अनेक रूपों और अभिप्रायों की विकसित समझ के प्रमाण उनकी कई कविताओं में मौजूद हैं। अगर वह संगीत की भाषा से अपरिचित होते तो टेलीविजन की इस कपटी कला का रहस्य खोल नहीं पाते। इस कलाबाजी में अखबार कई बार टेलीविजन से भी आगे निकल जाता है। सच को विकृत करने और लोगों को भरमाने की अखबारी कला का एक रूप यह है। देखो, जिनको मारा है उनके चेहरों को उन पर कोई रंग नहीं है, पर सौदागर जरा देर में उनमें कोई रंग डालकर उनको कपड़े पहना देंगे। चिकनाए आवरण पृष्ठ पर लोग भूल गए हैं से। आज की जिंदगी में अखबार की जगह और भूमिका के बारे में कुछ कहना अनावश्यक है। किसी ने ठीक ही कहा है कि एक सचमुच आधुनिक मनुष्य की जिंदगी में अखबार प्रातःकालीन प्रार्थना की तरह आता है। अखबार अपने साथ लाता है कुछ खबरें, खबरों में छिपी रहती है एक सनसनी, उससे नीरस जिंदगी में थोड़ी सी हलचल, कुछ सिहरन, कभी कभी गुदगुदी और कभी कभार हल्की सी चुभन पैदा होती है। लेकिन खबरों के पीछे मौजूद मनुष्य और उसके अनुभवों की चिंता अखबार नहीं करता। साधारण आदमी खबर के लायक तभी होता है जब वह दुर्घटना का शिकार होता है। पृष्ठ संख्या 135। अखबार आदमी से अधिक दुर्घटना के सबूत में दिलचस्पी रखता है। लाश वह चीज है जो संघर्ष के बाद बच रहती है, उसमें सहेजी हुई रहती है एक पिचकी थाली, एक चीकट कंघी और देह के अंदर की टूट। सिर्फ एक चीख बाहर आती है जो दरअसल एक अंदरूनी मामला है और अभी शोध का विषय है। तब वह चीख नहीं, लाश भेज दी जाती है छपाई के लिए। हंसो हंसो जल्दी हंसो। अखबार की इस अमानवीय दिलचस्पी को वही कवि पहचान सकता है जो अखबार की दुनिया को जानता है और उसमें खोई हुई चीख की खोज करना चाहता है। तभी वह ऐसी कविता लिख पाता है जो सूचनाओं और सबूतों में खोए आदमी की चीख की खोज खबर देती है। यहाँ वह कविता निरर्थक होगी जो अपनी कला पर पाठक को मुग्ध कर ले या उसे करुणा से व्याकुल बना दे। इन दोनों स्थितियों में पाठक आदमी की चीख को भूल जाता है। रघुवीर सहाय की कविता में मनुष्य और मानवीय अनुभव कई दूसरे कवियों की तरह कविता के लिए केवल बहाना नहीं होते। उनकी कविता मानवीय अनुभव और मानवीय रिश्तों को हर तरह के हमलों से बचाती है। हमला चाहे अखबार का हो या झूठी कविता का। जैसे अखबार में मानवीय सच्चाई खो जाती है, वैसे ही काल्पनिक दर्द की कविताओं में मानवीय संवेदना झुठलाई जाती है। रघुवीर सहाय ऐसी कवि दृष्टि की भी आलोचना करते हैं। अपने आसपास की दुनिया से बेखबर कविता के बारे में वे पूछते हैं, यह दृष्टि सुंदर आपे की कैसे बनी कि हर वह चीज जो खबर देती थी हो गई गैर। क्यों कलाकार को नहीं दिखाई देती अब गंदगी, गरीबी और गुलामी से पैदा। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। रघुवीर सहाय की कविता खबर देती है। वह जिंदगी की वास्तविकताओं और सच्चाइयों के अनुभवों की खबर देती है। जाहिर है कविता की खबर अखबार जैसी नहीं होती। अखबार की खबर जहाँ से शुरू होती है उसके पहले की और जहाँ खत्म होती है उसके बाद की खबर देती है रघुवीर सहाय की कविता। आजकल अखबारों में खोज खबर की बड़ी चर्चा है। उस खोज खबर की सीमा और कविता की खबर की संभावना यहाँ आमने सामने मौजूद है और साथ में पत्रकार की दृष्टि से कवि दृष्टि का द्वंद्वात्मक रिश्ता भी।